الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. صدق الله العظيم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. اور بیجا اڑانے والے, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, شیطان کے دوست ہیں, شیطان کی تباہ کرنے والے. شیطان اپنے مالک کا ناشکرا ہے. اگر تو ان مسکینوں مسافروں کو اپنے مالک کے فضل کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ہو تو خبر نہ لے سکے تو اچھی طرح نرمی سے ان کو بات کر دے. یعنی اگر کچھ دے نہ سکے اور تجھے امید ہے ملنے کی تو انہیں کہہ دو انتظار کرو, کچھ مل جائے گا میں دے دوں گا. فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا, نرمی سے بات کرو. پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27-28 آپ کے سامنے پڑھی. گزشتہ جب یہ 15 پارہ شروع کیا تو اس کی دوسری آیت میں بنی اسرائیل کا ذکر آیا تھا. وہاں کچھ بنی اسرائیل کی تفسیر کو بیان کرنا رہ گیا کہ یہ یہودی ہے کون, کہاں سے شروع ہوئے, اس کی جو تاریخ ہے نا. ہمارے ایک دو ساتھیوں کو اللہ جزائے خیر دے, وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ دو بات تو رہی گئی آپ کی, میں نے کہا چلو انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آج پھر میں نے سوچا کہ پھر کہہ دیا جائے انشاءاللہ اس پر, تاکہ بات ہمیں کھل کر سامنے آ جائیں کہ یہ بنی اسرائیل کب سے شروع ہوئے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہے. عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں, اصل ان کی حقیقت کو سمجھیں. ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے کی بات ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام, ان کے دو بیٹے تھے, یہ ٹو سن مشہور ہے, حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق, اور اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک کا نام تھا عیسو, دوسرے کا نام یعقوب تھا. عیسو اور یعقوب. اور پھر یعقوب علیہ السلام اللہ پاک نے ان کو نبی بنایا, اور نبی بھی کنعان کے نبی تھے, بہت بڑے نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کی اولاد میں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہاں گھر میں 12 بیٹے پیدا ہوئے. کتنے پیدا ہوئے؟ 12 بیٹے. سمجھو گے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ 12 بیٹے پیدا ہوئے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا لقب تھا اسرائیل, دوسرا نام کہہ دو. اسرا کے معنی عبد عربی میں, اور ایل کے معنی اللہ, عبداللہ. Another word you can say عبداللہ, ان کی زبان میں اسرائیل, سرون آف اللہ, عبداللہ. تو وہ جو 12 بیٹے سے اب یہ بنی اسرائیل شروع ہو رہے ہیں, چونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا, یعقوب سے بہت کم جانتے تھے, اسرائیل سے زیادہ, تو وہ فیمس ہو گئے بنو اسرائیل, اسرائیل کی اولاد, اسرائیل کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے ابھی؟ اچھا, یہ 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹے مشہور ہوئے اسرائیل کی اولاد سے, بنو اسرائیل. اچھا, اب یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹے جو دو بیٹے تھے, سب سے چھوٹے دو بیٹے تھے, یا تو دوسری بیوی سے تھے یا اس ایک بیوی سے تھے. اس میں مفسرین نے دو قول نقل کی ہے, ان کا نام کیا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین. حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہینسم تھے, بہت خوبصورت تھے, بنیامین بھی تھے لیکن یوسف بہت خوبصورت تھے, اور سمجھو کہ آدھا حسن گویا اللہ پاک نے دنیا کو انہیں کو دیا تھا. وہ واقعہ سورہ یوسف میں گزر چکا, بھی تفصیل میں نے بیان کیا ہے. تو یہ دوسرے دس بھائی جو تھے, ان دس میں سب سے بڑا بھائی, اس کا نام تھا یہودا. اس کا نام کیا تھا بھائی؟ یہودا. اب یہودا کو بہت نفرت تھی حضرت یوسف سے. کیوں؟ اس کے مقابل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے بڑی محبت تھی. یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے, ساری بیٹوں سے محبت تھی, لیکن چونکہ نبی تو نبی ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ایک ذہانت دی ہے, ان کو فراست دی ہے, وہ سمجھ گئے کہ آگے چل کر یہ یوسف نبی بننے والے ہیں. آگے چل کر کیا ہے؟ نبی بننے والے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس بڑے بھائی نے جس کا نام یہودا تھا, جس کا ذکر سیکنڈ رکوع اب سورہ یوسف میں ہے, سارے بھائیوں کو ابھارا کہ ہمیں کسی نے کہا ان کو قتل کر دو, کسی نے کیا کہا پھینک دو, کسی نے کیا کہا. تو یہ بڑے بھائی نے کہا جو سورہ یوسف میں ہے, قتل نہ کرو, ان کو کنویں میں ڈال دو. کیا کہا؟ کنویں میں ڈال دو. اب ان کو کنویں میں ڈالا یوسف علیہ, شارٹ کٹ کہہ رہا ہوں میں تاکہ بات پوری واضح ہو جائے. ان کو کنویں میں ڈالا, اب چھوڑ کر تو چلے گئے, وہ پورا واقعہ وہاں لکھا ہے. اب وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا, ان قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا, اور نکالا تو نکالنے کے بعد ان کو مصر میں بیچ دیا. کہاں بیچا؟ ایجپٹ میں. ایجپٹ میں ان کو بیچا لا کر کے, قافلے والے وہاں سے ہوں گے لائق, ایجپٹ لے آئے اس بچے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ, ہے کوئی چھوٹی سی قیمت میں خریدنے والا. اس وقت بھائیوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے خریدے, اور کیسے خریدتے؟ وہ آ کے دیکھتے رہتے تھے, کچھ کچھ دنوں کے بعد جا کے دیکھو نے کیا ہوا ان کا, تو بچہ بک گیا ہے. اور عزیز مصر نے ان کو خریدا, اور غلام سے اللہ پاک نے ان کو حکمران بنا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے. شارٹ کٹ, کاج سالی آئی جو سات سال کہاں پر؟ ایجپٹ میں, ہے نا. بہت قحط سالی آئی. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ داستان کیا ہے پوری, یعنی یہ کدھر چلے ہیں بارہ بھائی. اچھا, تو یہ قحط سالی آئی, تو اب دور دور تک بات پھیل گئی کہ رائس وغیرہ گروسریز تقسیم ہو رہی ہے ایجپٹ میں. وہاں عزیز مصر سے مشہور ہو گئی ہے, تو یوسف سے نہیں پہچانتے تھے عزیز مصر, وہ تو جو تھا وہ تو چلے گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بڑے ہو گئے, اینڈ ہی بیکم سو فیمس دیٹ ہی از شیئرنگ دیٹ گروسریز ٹو ایوری بڈی. ان کے بھائیوں کو, حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا, تو بیٹوں کو کہا جاؤ نا تم بھی ایجپٹ جاؤ, اور وہاں سے لے آؤ, سفر کر کے آئے. سارا
اردو نہیں سمجھتا تو اس کے لیے ٹرانسلیٹر ہو جائے.
If somebody can translate in the corner, yes. No? Otherwise, you have to... کوئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں قحط سالی ہو گئی, اور قحط سالی میں کیا ہوا, وہ بھائی بھی آئے گروسریز لینے کے لیے, ہے نا. اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہی ہمارا یوسف ہے, ان کو کچھ نہیں پتا تھا. اچھا, اب یوسف علیہ السلام نے ان کو گروسریز دیا, پھر سلولی سلولی شارٹ کٹ بلا لیا باپ کو بھی, یعقوب علیہ السلام کو کہاں؟ ایجپٹ میں. شام کی طرف سے آگے, اور بھائیوں کو بھی بلا لیا, سارے بھائی بھی آگے. اب مل کر کتنے ہو گئے بھائی؟ بارہ خاندان پھر ہو گئے نا, بارہ. یوسف علیہ السلام, چونکہ بنیامین کا ہی مسئلہ تھا, ان کو یہ بیچاروں نے پھنسا دیا تھا, تو یہ دو تو تھے ہی, اور دوسرے دس وہ بھی آ گئے. اب یہ یہاں رہنے لگے, بڑے ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے, سب کچھ ہو. کتنا خاندان ہو گیا ان کا؟ بارہ خاندان. बारह भाइयों का बारह खानदान हुआ। अब बनी इसराइल ही में से अल्लाह पाक ने नबी पैदा किया। अब नबी कौन आ रहा है इजिप्ट में? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ये बात समझ में आ रही है? मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल नहीं चले हैं, ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे दर बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से बनी इसराइल चले हैं। आई बात समझ में? अब ये बारह खानदान यहां आए मूसा अलैहिस्सलाम, और फिरौन ने गलबा पा लिया जो किब्तियों में से थे, और ये इसराइली थे, दो ग्रुप थे, वो किब्ती थे और ये इसराइली थे। चूंकि यहां पर तो ये बारह भाई यहां की पैदाइश नहीं थी, बाहर आके यहां रह गए, फिर उनकी औलाद बढ़ी ना, फिर वो बनी इसराइल बड़े हो गए, और फिर यहां किब्ती लोग रहते ही थे पहले से इजिप्ट में, तो बड़े मजबूत कौम थी। मैं तो हमें गया ना वो मेरे इजिप्ट में, तो वो बॉटल थी मुझे खोल ले रही थी यार, तो वो एक इजिप्शियन था, मैंने कहा इसको खोल यार, इसको खोल। उसके साथ मैंने अरबी में बात की, उसने ऐसा खोल दिया। मैंने कहा यार अजीब है तू, कैसे खोल दिया? दो तीन आदमी ने आले फिरौन, क्या कह रहे हैं मैं फिरौन की कौम में से हूँ, ताकत वाला। उस वक्त मुझे ये होगा, मैंने कहा यार अजीब लोग, अभी तक उनमें वो चीज़ मौजूद है। सुभान अल्लाह, कितने साल हो गए फिर भी उसने मुझे ये लफ्ज कहा तो मैं शक हो गया। एनीवे, तो ऐसे तजुर्बात भी बहुत सारे हैं हमारे। तो ये बारह खानदान बड़े हो गए, तो फिरौन उनको गुलाम बना रहा था, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को और इन लोगों को, क्योंकि ये तो बड़ा खानदान बहुत फैल गया ना सालों की बात, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम का फिर इंतकाल हो गया और भाइयों का, फिर इनका खानदान, ये बनी इसराइल का खानदान आगे चल रहा है, वो भाई तो सारे इंतकाल कर गए, अब ये खानदान। तो उन्हीं में अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अब फिरौन के जुल्म से बचाने के लिए अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप बनी इसराइल को लेके चलो। अब ये बनी इसराइल का बारह खानदान ये चलता है, और समंदर में अल्लाह पाक ने बारह रास्ते बना दिए, एक रास्ते पर नहीं। अब इन अंदाजा लगाओ कितने ज्यादा लोग होंगे कि बारह रास्ते बनाए गए, और हर भाई का जो खानदान था है ना, तो वो अपना अपने रास्ते पर निकल गए और वो समंदर पार कर गए। इतनी बड़ी अल्लाह ने उन पर नेमत की है। और फिर उसके बाद ये वादिय टी में गए, वादिय टी वहां पर गए, और वादिय टी में जाहिरी बात है गर्मी भी बहुत होती थी, भूख और प्यास भी लगता था, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं। तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी थे, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत भूख लगी है खाना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो आसमान से मन्नो सलवा आया। क्या आया? मन्नो सलवा। अब पानी किधर से लाए? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी मारी बड़े पत्थर के ऊपर, तो बारह चश्मे निकल गए। कितने? हर खानदान का एक चश्मा। वो कहीं से पानी लाने की, वो अपने चश्मे पर पानी पिए, वो अपने ये भी एक बड़ा रॉक था, वहां एक पत्थर मारा तो बारह चश्मे फूट गए, वहां बारह रास्ते बना दिए समंदर में, यहां बारह चश्मे पानी के निकल गए, और वो पानी निकलना शुरू हुआ। खाया पिया, खाया पिया, खाया, खाते रहे, पीते रहे। अभी लंबी दास्तान है, मैंने ये पहले सिपारे में बहुत तफसील से मैंने इसको बयान की है कि वो कपड़े कहाँ से लाते थे और फुला और फुला। इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत थी कि उनके नाखून भी नहीं बढ़ते थे, काटने की जरूरत पड़े ना, उनके कपड़े भी इतने भी सीने की ज़रूरत नहीं होती थी, जैसे जैसे उनके कपड़े भी अल्लाह पाक बढ़ाता गया, वही सीने की जरूरत भी। बड़ी नेमत है कि उसके ऊपर, इन लोगों पर तो बड़ी नेमत हुई है मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से। और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह को बहुत मोहब्बत थी ना, उनसे बात भी करते थे कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व ताला, इसलिए उनका लकब भी है कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से। अच्छा, अब ये खा खा कर थक गए मन्नो सलवा, तो इन्होंने फिर आगे चल कर कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम हमें तो अभी क्या चाहिए, मन्नो सलवा नहीं चाहिए, अल्लाह को कहो ज़मीन से हमारे लिए उगाएं कुछ और वो खाएं सब्जियां। सब्जियां, काश कि ये सवाल न करते तो हमारी बीवियों को आज गैस कुकर वगैरह कुकिंग करना न पड़ता, मन्नो सलवा ही खाते रहते, ये किचन का झंझट ही ख़त्म हो जाता। समझ में आई बात, ये अल्लाह की मर्जी है। बस उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक उस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस वक्त अल्लाह ने कह दिया था ये तेरे भाइयों के खानदान में ऐसे ऐसे होंगे कि वो अंबिया को कत्ल करने वाले हैं। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने कहा था तुम्हें तो डाला ही है और इन्होंने बड़ी साजिशें की है कि इन्होंने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने के लिए बंदोबस्त इन्होंने किया लेकिन अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया, आसमान पर उठा लिया, फिर ये वापस आ जाएंगे। अब ये अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक कुछ हो जाएं, कुछ पक जाएं, कुछ हो जाएं, अल्लाह पाक ने कहा ठीक है। फिर ज़मीन से वह अदसीहा व बसलीहा, उन्होंने ये बैगन मांगे और ये अनियंस मांगे और ये पोटैटोज मांगे जिसका जिक्र पहले सिपारे में है, वो अदसिया, ये लहसुन है, ये सारा चीज़ें, ये गालिक है ना, ये सब अल्लाह ने कहा कि इनको खाना है ये। वही जिस तस्का मूसा लिकौमिही फकुल नद्रिब बिअसाकल हजर फन फजरत, लकड़ी मारी तो 12 चश्मे निकल गए और फिर इनको खाने का शौक हुआ तो अल्लाह पाक ने ज़मीन से, और फिर अल्लाह पाक ने उनको कहा कि अब तुम्हारी कौम को लेकर ये कौम अमालका है ना उस पर हमला करो, फ़लस्तीन में रहती थी कौम अमालका, फ़लस्तीन में उन पर हमला करो। तो इन्होंने क्या कहा, इतनी नेमत खाने के बावजूद भी उन्होंने कहा कालो या मूसा इन्ना लन नदखुला अबदा मा दामु फिया फ़ज़हब अंत व रब्बुका, तुम जाओ तुम्हारे अल्लाह जाओ और लड़ो उनके साथ, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। अंत वर्ब इन हाउना कायदून, हम तो यहीं बैठेंगे, हम तुम्हारे साथ आने वाले नहीं है, मना कर दिया है ना। और फिर अल्लाह पाक ने कहा चलो ठीक है, यहाँ से दरवाजे से ज़रा झुक के निकल जाओ, हिट्टतुन कहो, तोबा का माना हिट्टतुन, तोबा तोबा, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो वो क्या कहते हैं हिट्टतुन नहीं हिंटतुन, हिंटतुन डाना लाओ डाना लाओ, अजीब कौम थी। खैर ये उन्हीं की नस्ल है जी, ये पूरी। अब मैं थोड़ा और समझाता हूँ दीवार, अब ये जो यहाँ बनाया है ना ये मस्जिद अक्सा, अल्लाह पाक इसकी हिफाजत फरमाए, ये एक ऐसी जगह है कि वहाँ हजरत पहले से अक्सा को सारे मानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसे मानते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहूद भी मानते हैं, नसारा भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं ना, मुशरिकीन भी मानते हैं, इसलिए सारे धर्म वाले वहाँ पर है। 2% ईसाई है वहाँ, यहूदी कुछ 30% होंगे और मुसलमान ज़्यादा थे उस वक्त से। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जब गलबा पाया था उस वक्त भी सब यही कहा था, तुम अपने अपने मज़हब की इबादत करो, हमें कोई लेना देना नहीं है, है ना। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने ऐसा ही कहा था, आज भी ऐसा ही है, लेकिन अब आजकल ये मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है कि वो मुसलमान मस्जिद में जाए तो परेशान है, एनी टाइम दे कैन अटैक। और इधर इन लोगों की जो दीवार है, चलो कुछ उस पर भी जिक्र हो जाए, ये जो दीवार है ना आपने देखा होगा, ये दीवार इसको विलिंग वॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं विलिंग वॉल, उनकी जो ये क्या करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं अपनी उम्मीदें, अपनी नजर व नियाज, अपनी मन्नतें ये लिखते हैं और उस दीवार के अंदर से अंदर डालते हैं, अंदर में घुसेड़ते हैं डालते हैं, ये लोग फिर सारा जमा करके फिर समंदर में डाल देते हैं। तो ये अपनी उम्मीदें लिख करके वो छोटी सी चिट्ठी में वहाँ दीवारों में डालते हैं, जहाँ आपने देखा होगा वो दीवार के पास खड़े होकर हिलते रहते हैं और वो दीवार के पास ही उनकी उम्मीदें हैं जो ये मांगते हैं। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं, वुजू, वहाँ वुजू का बनाया है, क्या ये मुसलमान वुजू करते हैं, हम भी वुजू, उनका वुजू क्या है, वहाँ लोटे पड़े हुए हैं, ये लोटे लेते हैं और उनसे सिर्फ 3 बार अपना यहाँ तक ये हाथ धोते हैं, इधर हाथ धोते हैं, इधर हाथ धोते हैं, ये इनका वुजू है। हमारा वुजू तो पता है 4 फर्ज है, सुन्नत है, इनका वुजू क्या है, सिर्फ यहाँ तक ये हाथ धोते हैं और फिर ये जाते हैं वहाँ पर इबादत करने के लिए। वहाँ असली उनकी कहते हैं हमारी असली तौरात ये है, ये असली तौरात है, इसको हाथ नहीं लगाते ये लोग, बहुत ही कहते हैं डिसरिस्पेक्ट है, क्या हूँ असल को, वो काश मेरे वो खड़े खड़े उसको देख लेते हैं। उनकी जो दूसरी किताब है तिलमूत, उसको ये पढ़ते रहते हैं, हाथ में रखते हैं, सफ़र में ले जाते हैं और फिर उसको देख करके इसको पढ़ते हैं। अच्छा, और ये जो कुब्बतु सखरा जो है, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था, ये वो जगह, ये दीवार जहाँ पर है ना, हम मुसलमान भी इस दीवार से मोहब्बत करते हैं, ये वो जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुराक को बांधा था, समझ में आई बात। तो ये वो जगह है यहां पर, इसको हायतुल बुराक कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, हायतुल बुराक। सारे अंबिया ने भी अपने बुराक बांधे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे उस बुराक को यहाँ पर बांधा हुआ था। और ये कुब्बतुस सखरा है हजरत सुलेमान, ये बहुत मानते हैं, चूंकि यहाँ कुब्बतुस सखरा जो आपने देखा है ना, वो जो बड़ा रॉक है ना, ये वो जगह है जहाँ पर ये लोग अपनी कुर्बानी रखते थे। पहले ज़माने में कुर्बानी कबूल होने का ये ज़रिया था कि आसमान से आग आती थी और उसको खा जाते, जिसकी कुर्बानी खा जाए ही इज़ कुर्बानी एक्सेप्टेड, और जिसकी कुर्बानी न खाएं आग आसमान से आकर उसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। हाबिल और काबिल का वाकया भी यही हुआ था, हाबिल और काबिल का वाकया भी यहीं पर हुआ था, उन्होंने जो कुर्बानी निकाली थी हाबिल और काबिल की, हाबिल की कबूल हो गई, काबिल की कबूल नहीं हुई थी, वो वहीं पर हुआ था। और उन लोगों के जहन के हिसाब से कि इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक, हमारे यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़बह किसको किया गया है, किया गया था करने का तरीका इरादा किया था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, वो कहते नहीं इस्माइल को नहीं इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़बह किया, तुमने उनकी बिलीव ये है। और हमारी बिलीव तो क्या है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, जैसे हमारे यहाँ मरवा माउंटेन है सपार मरवा, वहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनको लिटाने वगैरह और दूसरे माउंटेन, ये लोग कहते हैं कि ये इसहाक अलैहिस्सलाम को उनका जो मोरिया माउंटेन है जिनको ये मानते हैं, वहाँ पर इसहाक अलैहिस्सलाम को ये 13 साल की उम्र थी और उनको लिटाया था, फिर अल्लाह पाक ने आसमान से ये भेजा है वगैरह इस तरीके से। तो ये हायतुल बुराक जिसको कहते हैं, ये वही दीवार है जिसको हम कहते हैं अल्लाह के नबी ने बुराक बांधा, इसलिए हम इसको मुतबर्रक जगह मानते हैं। और ये लोग कहते हैं विलिंग वॉल है यहाँ, हम जो भी दुआ करें और वहाँ जा कर के अपने पेपर वगैरह रखते हैं, दुआ करते हैं। अब ये रोते क्यों है वहाँ, देखे कभी अपने, बहुत रोते हैं दीवार के पास, ये रोते क्यों हैं, इसलिए रोते हैं कि वो यूँ दुआ करते हैं कि दोबारा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आ जाए। बस वो क्या क्यों रोते हैं, वो क्या दुआ करते हैं, हुकूमत किसकी आ जाए, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की और सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो हुकूमत थी, हमारी हुकूमत दोबारा वही आ जाए, इसलिए वो रोते हैं। मर्द एक तरफ होते हैं, औरतें एक तरफ होती है, आपने देखा होगा वहाँ कभी गए हो जी, मर्द एक तरफ, ये तो मैंने तो कभी गया नहीं हुआ लेकिन तारीख मैंने पढ़कर आपके सामने बता रहा हूँ, लेकिन जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि मर्द एक तरफ दीवार की तरफ इबादत करते हैं, औरतें दूसरी तरफ इबादत करते हैं। अच्छा, आगे ये लोग हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते, उनका कहना यह है कि पैगंबरी सिर्फ इसहाक अलैहिस्सलाम के खानदान में होनी चाहिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में नहीं। हम जिब्राइल से दुश्मनी इसलिए करते हैं कि इन्होंने रॉन्ग आदमी पर वही उतारी, वही उतारनी चाहिए हमारे अंदर में कोई नबी, आखिरी नबी बनी इसराइल में से होना चाहिए, इसलिए वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी दुश्मन मान। कुल मन कान अदुवल लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, ये हजरत उनको यूं कहते हैं, इसलिए उनका ख्याल ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है, इसीलिए वो हजरत ईसा अलैहि सलाम को भी नहीं मानते, और उनकी साजिश यही थी कि इनको कत्ल किया जाए, ये तो ईसाई यहूद में से नहीं, क्योंकि उन पर किताब उतारी वो इंजील है, ये दूसरा मजहब हो गया, हमारी किताब का फॉलोवर होना चाहिए नबी जो तौरात को मानने वाला हो, और उसी के हम नबी मानेंगे, और लोगों को रोकते थे। तो इसी तरीके से ये सारी बातें सूरह माईदा में अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील से बयान की है, और उनके जो मकर फरेब थे उनको। अब ये लोग, इनकी बहुत सारी बातें हैं, चलो और भी है, ये संदूक जो है ना जिसका जिक्र वक़्तल दाऊद जालूत, वहाँ जो ताबूत का जिक्र है दूसरे पारे के अखीर में, ताबूत, ये ताबूत कहाँ से आया था, जन्नत से आया था, बॉक्स था, और उसमें आदम अलैहिस्सलाम पर उतारा था अल्लाह पाक ने, और आदम अलैहिस्सलाम अपनी कीमती चीज़ उसमें रखते थे, फिर ये होते 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 याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर इनके बेटे, फिर याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, फिर याकूब अलैहिस्सलाम के बाद और फिर ये पहुंचा बनी इसराइल यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर बनी इसराइल के पास, फिर मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनके अंदर में ये जो आज वो खोद रहे हैं ना अंदर में, ये और वो वही तलाश कर रहे हैं। दो चीज़ें तलाश करते हैं, एक तो ताबूत तलाश कर रहे हैं। क्या तलाश कर रहे हैं? ताबूत। और एक तलाश कर रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर थे, यूँ कहते हैं लोग, नाउज़ुबिल्ला, क्या कहते हैं, जादूगर थे। तो उनकी सब जादू की सारी चीज़ें नीचे दफन की हुई है, ये मशहूर है उनके अंदर, ताकि हमें, ये बड़े जादूगर थे ये लोग। पहले सिपारे में अल्लाह ने जिक्र कर दिया कि ये यहूदी लोग बड़े जादूगर थे, ये जादू करते थे मियाँ बीवी को सेपरेट करने का जादू। वहाँ जहाँ हारूत और मारूत को जो दो फरिश्ते को जो भेजा था ना, बिबाबिल हारूत और मारूत, वो ये इन लोगों के लिए, तो ये इनके अंदर में एग्जामिनेशन के लिए भेजा था। तो इनकी भी दूसरी दास्तान है जो मैंने पहले सिपाह में तफसील से बयान की है कि हारूत मारूत ने फिर क्या हुआ और लोग उनसे सीखने लगे जादू वगैरह। तो ये जादू इसीलिए इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है ना, बनी ये बनी इसराइल ने, यहूदी ने जादू किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को लिया और उसमें 11 नॉट्स लगाए। कितने नॉट्स लगाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल था दाढ़ी का, या आपके लंबे बाल थे जुल्फे, तो वो उसमें से वो काम वाले को पैसे दिए का बाल आपकी कंघी ले आओ, जो आप कुम करते हैं, आप सासरम के बाल होते थे लंबे, लुम्मा जुम्मा, ये जो तीन किस्म के बाल कान तक होते थे, फिर नीचे फिर यहाँ तक के होते थे, तो बड़ा बाल ले लिया, या तो दाढ़ी का था या तो फिर सर का बाल लिया और उसमें 11 नॉट्स लगाए उन्होंने। कितने? 11 नॉट्स। और फिर उस पर उन्होंने कुछ मंत्र, जो शैतानी चीज़, उन्होंने दम किया और उसको ये बंच ऑफ पाम ट्रीज जो होता है ना, उसमें उन्होंने लपेट दिया। लपेट करके ये जो बंच जो है वो कुएं के अंदर में, जहाँ पानी नहीं था, थोड़ा पानी था बस, थोड़ा सा बस, वो पत्थर के नीचे दबा दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस जादू का इतना असर होता था कि आप भूल जाते थे, यानी दुनियावी एतबार से, दीन के एतबार से नहीं, अल्लाह पाक ने उनकी हिफाजत की, चूँकि उन पर वही भी नाजिल होनी थी ना, तो दुनियावी एतबार से मैंने ये काम किया या नहीं किया, मैंने ये किया या नहीं। और बाज़ मरतबा कह रहे थे कि ला अमूत वला अहया, इतना ख़तरनाक जादू था कि मुझे पता नहीं मैं ज़िंदा हूँ या मुर्दा हूँ। एक साल तक आप पर यह जादू रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अल्लाह पाक ने दो फरिश्ते को भेजे और ये दोनों फरिश्ते, ये तफसीर भी हो गई है मेरी लास्ट चैप्टर में, उसके अगले साल आखिरी सूरतों में सूरह फलक और नास की तफसीर में मैंने इसको बयान किया था। ये आप सूरह फलक और नास दो सूरत है, ये दो फरिश्ते आए, एक सिराने पर बैठ गए, एक पीछे बैठ गया, और इन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू की कि इनको क्या हुआ है। तो दूसरा कहता, तो सोए, इनको क्या पता है? फरमा, नहीं, ये जाग रहे हैं, नबी सोते हैं, उनका दिल जाग रहा है, वो सुन रहे हैं, बोलो क्या। फरमा, इन पर जादू किया है। फरमा, किसने? लबेद इब्न आसम, यहूदी ने जादू किया। अच्छा, किधर है? का फुला कुएं में रखा है। किस तरह की? सारी बातें अल्लाह के नबी सुन रहे हैं। जब उठे ना आँख से, तो उसके बाद हज़रत आयशा से बयान फरमाया, कुछ सहाबा किराम को बुलाया, काम जाते हैं वहाँ, और वहाँ से वो बंच निकाला, उसका पानी पीला हो चुका था, उस जादू की वजह से पानी क्या है, पीला हो चुका था। उस वक्त अल्लाह पाक ने दो सूरत उतारी नबी सासन पर, कौन सी? सूरह फलक और नास। अब इसमें मुफस्सरीन का इख्तलाफ है, ये दोनों सूरत कुरान के हिस्सों में से है या नहीं, ये लंबी तफसीर है, लेकिन जमहूर उलमा कहते हैं ये भी कुरान का हिस्सा है, सूरह फलक और नास। ये तो आप मेरे सामने बैठो ना, 10 साल तुम्हें समझाऊँ ना तुम्हें, मौलवी बनना आसान थोड़ा है, समझ में आई बात? जब हम डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि क्या है। तो इसमें 11 आयत है, कितनी आयत है? 11, सूरह फलक और नास ऑल टूगेदर इज 11 आयत इन साइट, है ना, 11 आयत है। अल्लाह के नबी एक आयत पढ़ते गए, एक नॉट खोलते गए, एक आयत पढ़ते गए, एक नॉट खोलते गए, इसी तरह ही रिसाइटेड अप्रोक्सीमेटली 11 आयत्स, ऑन द सारे नॉट खुल गए और आपके ऊपर से जादू ख़त्म हुआ। आप ये, और आपके लिए जितनी भी साजिश की है, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा था अल्लाह पाक ने, ये तुम्हारे कौम जो है ना, ये लोग अंबिया को, तो इन्होंने साजिश की, जैसे मैंने बताया था, पत्थर रखा गिराने के लिए और इन्होंने जहर दिया वो गोश्त में, ये सारी उनकी साजिश थी नबी अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने की। बहुत बड़ी दुश्मनी थी उनको, क्यों? उन इस्माइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से आए, इसहाक अलैहिस्सलाम के अंदर से उनको आना चाहिए था वगैरह, और बहुत सारी बातें इन्होंने बयान की। खैर, ये संदूक जो है, इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का कुर्ता और उनका इमामा और उनकी सारी चीज़ें, उनकी जो आसा जो था ना, वो सांप बन जाता था, यह सारी चीजें उसमें हैं और ये तलाश कर रहे हैं किधर गई। ये जो बाबल वालों ने हमला किया था ना, वो ले गए थे, वो सारी चीजें ले गए थे। ये बाबल वालों ने हमला किया था और उन्होंने इन सबको गुलाम बनाया, जैसे मैंने कहा था। ये अब ये क्या करते हैं, उस ताबूत को इतना बिलीव करते हैं ये लोग, इतना मानते हैं कि उसके वसीले से उस जमाने की यहूदी दुआ करते थे। उन पर कोई भी जलजला आता था, उन पर आफत आती थी, उन पर मुसीबतें आती थी या सैलाब आता था, तो ये लोग उस ताबूत को सामने रखकर दुआ करते थे, अल्लाह मुसीबत को हटा देता था, क्योंकि उसमें अंबिया अलैहिस्सलाम की बरकतें थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम वगैरह की उसमें, और ये सारे अंबिया से चलता हुआ आया था। अब जब कभी ये लोग लड़ने के लिए जाते थे तो सामने ताबूत रखते थे और फिर लड़ते थे, तो जहां कहीं गए ये कामयाब हो गए, जहां गए इस ताबूत की, ये लोग बहुत ज्यादा मानते थे और लड़ने में उनको हिम्मत आती थी कि हमारे पास तो है ताबूत। लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम कितना ही एहतमाम करो, लअन अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह पाक ने लानत की है यहूद और नसारा पर। तो यहूद औलाद इब्राहिम है, समझाई बात, इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम इसहाक के खानदान से हैं, जो मैंने बताया यहूदा बड़ा बेटा है, उनकी सारी नस्ल आज तक है और उन्हीं को यहूदा की वजह से यहूदी कहते हैं, यहूदा की वजह से यहूदी कहते हैं। ये लोग काले कपड़े क्यों पहनते हैं, है ना, हम भी तो पहनते हैं काले कपड़े, जो खास पहनते अक्सर वो इसलिए, ये सोग मनाते हैं। सोग क्या मनाते हैं, हमारे पास से नबूवत ले ली गई, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई, और शोक मनाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का, ये रोते हैं, शोक मनाते हैं कब हमारी हुकूमत दोबारा आ जाए और हम हुकूमत करें, इसलिए उनका फ्लैग में समझाता हूँ उसको। तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की, उसमें भी दो किस्म की यहूद है, एक तो क्या है ऑर्थोडॉक्स और दूसरा नॉन ऑर्थोडॉक्स। अरे मेरी बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ऑर्थोडॉक्स है ना सर, आपके पास इतनी तफसील नहीं होगी, होगी भी अल्लाह वाले की, मेरी बात सुनो, ऑर्थोडॉक्स है ना ये, उन लोगों पर टैक्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, उन पर टैक्स नहीं है। वो उनका काम क्या है ऑर्थोडॉक्स का, कि तुम्हारा काम है शादी करो बच्चे बनाओ, हम तुम्हें बेनिफिट देंगे, बस काम नहीं करना, हम पैसे देंगे तो बस शादी करो बच्चे बनाओ बच्चे बनाओ बच्चे बनाओ, ये काम था उनका ये, इसलिए उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से उन पर मदद होती है। अब ये सुल्तान अब्दुल हमीद जो तुर्की में जो था ना, उस जमाने में यमन से गालिबन 5,000 यहूदी वहाँ पहुँचे थे, यहूदी हर किस्म के वहाँ जमा हुए हैं, असली उनकी जगह नहीं है, ये तो रहते थे मदीना मुनव्वरा में, यहाँ से भगाए गए और सारी दुनिया के जमा हुए, कुछ अमेरिका के हैं, कुछ यहाँ के हैं, कुछ रशियन हैं, कुछ मुरक्कन हैं, कुछ कहाँ के हैं, अब इनकी अलग अलग निशानी है। तो ये जो देखा होगा आपने, ये काली टोपी पहनते राउंड, ये राउंड जो टोपी पहनते हैं ना, ये अमेरिकन जूस है, ये क्या है इनकी ये निशानी, अमेरिकन यूरोपियन और रशियन, ये इनकी निशानी है। और दूसरे है ना वो जो ऐसी चिपकाई हुई पहनते, देखा होगा छोटी ऐसी पीछे ऐसी छोटी, वो ये सब है ना, ये लोग, ये मोरक्कन है, ये आइजीरियन ये सब, ये जो दूसरी जो कंट्री है ना वहाँ की, ये लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ ये सब अलग की अलग अलग निशानी है। अब ये लोग ये समझते हैं, ये गालिबन 359 days, 360 days a year, वो उनका एक दिन है जिसको ये लोग यौम मकफूर कहते हैं, यौम कबूर क्या मतलब, तोबा का दिन, यौम मकफूर मकफिरत का दिन, पूरे 359 days गुना करो और उस एक दिन में तोबा कर लो, इसलिए उसको दिन को क्या कहते हैं ये लोग, यौमे मकफूर कहते हैं। और उस दिन में ये लोग बड़ी रोते बहुत रोते हैं, बस पूरी जिंदगी का साल का पूरा गुना माफ करा देते हैं, समझो यही बात। और साथ साथ में ये उनका एक दिन है हफ्ते में जिसको सबात बोलते हैं लोग, सबात हमारे अरबी में यौम सब्त है, कुरान करीम में उनका जिक्र किया है, सैटरडे उनका दिन है, इसको सबात बोलते हैं लोग। सबात यानी फ्राइडे मगरिब के बाद से लेकर सैटरडे मगरिब तक 300 ऐसी चीज ऐसे काम है वो नहीं करते, 300 वही बात वो नहीं करते ये काम। उसमें से सबसे बड़ा काम ये है कि उस दिन वो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते, मोबाइल फोन भी ऑफ कर देते, घर का फोन भी ऑफ कर देते हैं उस दिन। इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक से चलती है कोई भी चीज वो इस्तेमाल नहीं करते उस दिन। खाना भी नहीं पकाते, क्योंकि खाना तो पका लकड़ियों से पकाओ या तो वहां पकाओ, तो इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उस दिन वो खाना भी आग पर नहीं पकाते, वो जो पहले से पकाया हुआ खाना वो खाते उस दिन नहीं पकाते, मैंने उस दिन इलेक्ट्रिक कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ साथ में उनके लिए काम ये भी है कि पूरा हफ्ता जो है उनकी हफ्ते यानी 6 दिन जो है उनकी MTN जो खुली होती है पैसे निकालने की, सैटरडे को पूरे इसराइल में पैसे निकालने के जितने मशीन है सारे बंद है, पूरे इसराइल में एक MTN खुला होता है जिसको ये लोग हलाल MTN कहते हैं, बस ये हलाल है, इससे निकाल और कहीं से जिसमें उनके हलाल पैसे हो वही निकाल करके वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वरना ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ये तिल अबीद जो एयरपोर्ट है ना, सुना है कि नहीं सुना है, ये तिल अबीद क्या चीज़ है? ये वो जगह है जहाँ यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रहे थे कुछ दिन तक, तिल अबीद ये वो जगह वहाँ समुंदर में मछली के पेट में वहाँ से वो निकले थे, अल्लाह पाक ने इनको जिसका जिक्र भी कुरान करीम में है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब हैकले सुलेमानी बनाया, हैकले सुलेमानी जब बनाया तो उस वक्त बाबल वालों ने जो अटैक किया ना उसके बाद अटैक किया, जैसे मैंने उस दिन समझाया था उसको, अटैक किया तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत से गुलाम बना के ले गए और ज्यादा कत्ल ही कर दिए, और उन्होंने ये वो तिल अबीद जो जगह है यहां इन्होंने एक इमारत बनाई जेल खाना, क्या बनाई जेल, और उसमें उन्होंने क्या किया था ये उसके अंदर में इन लोगों को जेल में रखा था। इस जगह को क्या कहते हैं, तिल अबीद कहते हैं। अच्छा, बाद में फिर ये भी तो बड़ा हो गया और क्या से कहां हो गया, तो ये जो हैकले सुलेमानी है ना इसके तीन पात है। आम लोग पीछे रहते हैं और जो उनके बड़े उलमा है ना वो बीच में जाते हैं, और आगे की जगह है कहां, ये तो ताबूत है, सकीना है, यहां ये जो खास बड़ा आलिम हो सिर्फ वही उस पार्ट में जा सकता है और कोई नहीं जा सकता, ये इनके लिए वो कहते हैं कि ये हमारी खास जगह है कले सुलेमानी, इसको ये बहुत ज्यादा उसके बिलीव करते हैं। आगे फिर ये उनकी जो औरतें जो है उनके लिए, उनका देखा होगा आपने एक शॉल पहनकर वो इबादत करते हैं, शॉल जैसी, और उसके ऊपर तीन निशानी है। एक निशानी तो उनकी ऐसी है, वो स्टार जैसी है, इसको डेविड क्या स्टार ऑफ डेविड कहते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम स्टार ऑफ डेविड, स्टार ऑफ दाऊद कहते हैं ये लोग, कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम की हमारी निशानी है, जो बहुत मानते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्म, चूंकि ये इनका मकान बनाया हुआ था ना। और एक दूसरी जो ये सिंबल जैसा बनाया हुआ होता है, ये उनकी निशानी है कि मर्द औरत जमा हो तो ही बच्चे पैदा हो सकते हैं, उसकी तरफ इशारा है, बगैर अकेले मर्द से नहीं होगा, अकेले औरत से नहीं होगा, उसकी तरफ। और तीसरी जो एक निशानी है वो उसमें वो इशारा है, एक वक्त आने वाला है कि दरिया फुरात दरिया नील के दरमियान में हमारी सबसे बड़ी स्टेट होगी, हुकूमत बनने वाली है उनकी तरफ, इसलिए उनके फ्लैग के ऊपर भी यही 3 निशानी है, और ये लोग इसी की शॉल पहन करके उस दीवार के पास खड़े होकर ये दुआएं भी करते हैं, कहते हैं ये बड़ी बरकत वाली है और हमारा ये काम आगे चलकर होने वाला है वगैरह वगैरह ये कहते हैं। अच्छा, अब ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, ये ऑर्थोडॉक्स और नॉन ऑर्थोडॉक्स कैसे बन गया ये भी समझे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे और दोनों बेटों में इख्तलाफ हुआ, दो ग्रुप बन गया जी। और एक को सफादी कहते हैं, एक को क्या कहते हैं, सफादी, और गालिबन दूसरे को अक्षनाजिस ऐसा कुछ कहते हैं ये लोग। ये जो अक्षनाजी है, अक्षनाजी शायद गालिबन कहते हैं वो, उनका वध है ये, अक्षनाजी है वो यूरोप के रहने वाले, रोमन के रहने वाले, रशियन के रहने वाले, और सफादी जो लोग हैं ये कहते हैं नहीं, ये लोग हैं, ये मुरक्कन हैं, ये नाइजीरियन हैं, ये फुला फुला ये लोग हैं। अब इनकी अलग अलग निशानी है जिससे ये लोग पहचाने जाते हैं। अपनी वहाँ दीवार के पास 13 साल के बाद बच्चों को ले जाते हैं, हमारे तो 7 साल का हुक्म है ना नमाज के बाद, उनके यहाँ क्या 13 साल के बाद, क्यों, उनकी बिलीव क्या है, फरमाया 13 साल से पहले इस दीवार के पास बच्चों को नहीं ला सकते हैं, कि इसहाक अलैहिस्सलाम को भी ज़बह किया था 13 साल की उम्र में, उससे पहले नहीं। तो उनकी बिलीव ये है अगर बच्चों को लाना हो यहाँ, जैसे मैंने कहा ना कि उनका ये माउंटेन है यहाँ, वो इसीलिए इबादत भी करते हैं, तो वो अब इस तरीके से उनकी बिलीव है और उसको ये करते हैं। अच्छा, उस दिन ये लोग परफ्यूम भी नहीं लगाते और ज़्यादा सफ़र नहीं करते, थोड़ा सा चलते हैं, ज़्यादा नहीं, और उस रात में और उस दिन में मियाँ बीवी जमा नहीं होते, वो इंटरकॉर्स भी नहीं करते, जिमा भी नहीं करते, और इसी तरह पका हुआ खाना वगैरह नहीं खाते हैं, और ये लोग ख़ास इबादत में अपना दिन गुजारते। उनकी औरतें, इसकी भी अजीब क्या है, वो जिस दिन शादी होती है ना तो बॉल्ड हो जाती है, बाल कटा देती है सारे बाल, क्यों, इसलिए कि पहले तो उनके बाल लोग देखते थे, अब तो ये शादी कर रही है, शौहर की वजह से गैर महरम की नज़र उस पर ना पड़े, उसके बाल पर, हम लोग गोरे लोग तो खुले ही रहते हैं ना बाल वगैरह, नज़र ना पड़े बस, इसलिए बाल काट देती है, पूरे बदन पर नज़र पड़े तो कोई बाल पर नहीं पड़नी चाहिए, है ना, समझना ही बात। और फिर जब शादी हो जाती है उसके बाद वैसे ही रहते हैं, और वो उसके बाद वो जब बाल उगना शुरू होते हैं तो सिर्फ शौहर की नज़र उसके बाल पर पड़नी चाहिए और किसी की नहीं। इसलिए ये जो विक विक बोलते हैं ना, वो पहनते हैं ना विक बोलते हैं ना उसको, औरतें पहनती हैं ये विक, उनकी औरतें पहनती हैं ताकि किसी की नज़र उनके बाल पर न पड़े। और सबसे ज़्यादा विक की अगर ये सेलिंग होती है तो वहाँ होती है सारी दुनिया से ज़्यादा, आई बात समझ के अंदर में, इनको देखा होगा एक तरफ बाल लटके हुए होते जी ऐसा, और दाढ़ी तो है ही। तो उन्होंने कहा हमारी तौरात में लिखा हुआ है कि तुम्हें सर की दोनों साइड में शेव नहीं करना है, सर की दोनों तरफ में शेव नहीं करना है, इसलिए वो बीच में तो काटते हैं लेकिन साइड वाले बाल लटकाते हैं, और दाढ़ी रखने का उनको हुक्म है, और बहुत सारी चीज़ है, बस ये इनकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये इन लोगों की बरकत से दो चार बातें जहन, अगर तुम कभी जाओ ना तो कम से कम तुम्हारे जहन में रहे कि ये कुब्बत सखरा क्या है, या हायतुल ये 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 क्या है जहाँ बुराक बांधा जाता था, हायतुल बुराक जिसको कहते हैं, और ये ऑर्थोडॉक्स कौन है, ये नॉन ऑर्थोडॉक्स कौन है, इनकी निशानी क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये अभी तो ये मिक्स हो रहे हैं सब कुछ। अच्छा भाई, तो ये तो बात कुछ मुख्तसर, अब तो समझ में आ गया कि अभी कुछ भी सवाल है ना, माशाल्लाह। चलो, इन्होंने 2 लाइन का कहा, 2 मिनट का मेरा मैं ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, है ना, है पूरा ही ले लिया मैंने, आज बात पूरी समझ में आ गई इंशाल्लाह। अब शायद अब ये इन कौम को समझना बहुत आसान होगा, जहाँ कहीं तफसीर आए कुरान करीम में बड़े फसाद बयान फरमाए इन लोगों के, बड़े फसाद है कुरान करीम में, जगह जगह उनकी नाशुक्री बयान की है बहुत ज़्यादा, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम और यहिया अलैहिस्सलाम और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम, बस और क्या कहते हैं या
फलस्तीन वाले मुसलमान हैं, हाँ जी, ये पहले यहूदी थे फिर बाद में मुसलमान हुए, या पहले अरब थे और ईसाई थे, और जो
मैंने कहा ना कि सारी दुनिया के अरब वहाँ जमा हुए, सबसे पहले जो ओरिजिनल अरब थे वो रहते थे मदीना मुनव्वरा में, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको निकाला वहाँ से, फिर वो खैबर में गए, फिर खैबर से भी इन्होंने अपना मरकज वहाँ बनाया, ये ओरिजिनल अरब है, ओरिजिनल अरब है ये, वहीं ये असल है। फिर तो दूसरे दुनिया से उन्होंने भरपाई करनी थी ना, उस कंट्री बनानी थी ना, तो सारी दुनिया से अफ्रीकन जूस आ गए, अमेरिकन जूस चले गए, इधर यूरोप के गए, रशियन के गए, वो मोरक्कन के गए, नाइजीरिया के गए, ये सारे जमा होकर वहाँ हर किस्म का रूप मौजूद है। एशियन रूप भी है वहाँ, वहाँ गोरे भी है, काले भी है, ये सब मिलकर के ये पूरे हरेक, अब हरेक की अलग अलग निशानी है, जैसे मैंने इशारा किया, हरेक को अलग अलग उन्होंने स्टाइल दी हुई है ताकि पहचाने जाए कि असली रूप असली कौन है, नॉन असली कौन है। ये जो कहते हैं ना कि ये ऑर्थोडॉक्स, ये असली है, ये असली है, इनको असल समझते हैं। खैर, यहाँ तक तो सारी बात हो गई है ना। और ये क्या कहते हैं, नहनु अहिब्बुल्लाह, क्या कहते हैं, हम अल्लाह के महबूब है। और क्या कहते हैं, जहन्नम में हम नहीं जाएंगे। कुरान में जिक्र किया अल्लाह पाक ने पहले सिपारे में, 14वें सिपारे में, हम जहन्नम में जाने वाले नहीं हैं। अगर जाए, कल चले भी गए दो चार दिन के लिए, अरे दो चार दिन की क्या बात करता है, वहाँ तो एक दिन ही 50,000 का है, एक दिन ही 50,000 साल का है, एक दिन ही। कुरान कहते ना, 50,000 ईयर्स है, अब दो चार दिन ही चले गए तो काफ़ी है, लेकिन दो चार दिन नहीं है। जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया, वो उनके लिए तो साफ फैसला है, इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की यहाँ दीन अगर कोई मकबूल है, कौन सा है, इस्लाम है। वमन यबतगी गैर अलइस्लाम दीनन फलन युकबल मिनहु, ज़र्रा बराबर इसको कबूल नहीं किया जाएगा। खैर, यहाँ तक बाकी रखते हैं। अब बात छेड़ूंगा मैं अभी इसराफ की, तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, बात पूरी समझ में नहीं आएगी। दो चार बात इम्पोर्टेंस है, वो मुझे इसराफ पर से बयान करनी है, इसराफ और तबजीर में, तो इसको कल के लिए छोड़ देते हैं, वैसे मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, ठीक है ना, इंशाल्लाह। चूँकि आज तो दोपहर में दूसरा एक बयान था उधर भी खलीफा में, तो इंशाल्लाह उस पर कल, मैं समझता हूँ तफसील से आगे फिर पूरी आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह में अमल के तौर पर। वैसे इरादा भी था कि कुछ वुज़ू प्रैक्टिकली हो जाए, वुज़ू ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु साहबे किराम की सुन्नत पर अमल हो जाए, कि उन्होंने प्रैक्टिकली करके बताया था कि वुज़ू कैसे करना है, प्रैक्टिकली साहबे किराम को जमा किया और बताया, तो उस सुन्नत पर भी अमल हो जाए। बहुत सारे साहबे किराम प्रैक्टिकली बताया, एक तो सुन लेना और एक प्रैक्टिकली करके बताना, इसमें उस सुन्नत का सवाब भी मिल जाए, तो उस पर कुछ मसाइल हो जाए। और फिर कुछ नमाज के कुछ इंपॉर्टेंट मसाइल है, कुछ सोच रहा था कल का शायद सबक हम पढ़ लेंगे, उसके बाद एक दो दिन हम थोड़े मसाइल फिर सीख लेंगे, ताकि मसाइल बहुत ज़रूरी है, मसाइल बहुत ज़रूरी है। और आपने माशाल्लाह कितने मसाइल सीखे, आपको पता है ना, देखो कितने ऐसे मसाइल हमें पता ही नहीं थे। तो कुछ मसाइल जो हमारे रोज़मर्रा के हैं, वुज़ू और नमाज, ये बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह, उस पर भी कुछ बात करेंगे कल के दिन इंशाल्लाह। अगर मेरा मुर रहा तो मैं तफसीर कर दूंगा, या तो मसाइल बयान कर दिया, कल इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। या अरहमुर रहीमीन, या ज़ल जलाल वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या बदीअ समावाति वल अर्द, या बदीअ समावाति वल अर्द। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, तेरा करम हुआ, तेरा फजल हुआ, तूने मुझे और मेरी औलाद को और मेरे माँ बाप को और मेरे दादा को और मेरे दादी को, मेरे नाना को, अल्लाह हमारे ख़ानदान को और हम सब को तूने इस्लाम में पैदा फरमाया। ऐ अल्लाह, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, तेरा बहुत बड़ा करम हो हम पर। ऐ अल्लाह, जितना शुक्र अदा करे इलाहुल आलमीन कम है। ऐ अल्लाह, हमें इस इस्लाम की, इस ईमान की, इस तौहीद की कदर करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, ईमान देने के बाद कुफर से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तौहीद देने के बाद शिर्क से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हिदायत देने के बाद जलालत और गुमराही से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, या अरहमुर रहीमीन, इज्जत देने के बाद जिल्लतियों से हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, ईमान पर कायम दायम फरमाना और ईमान पर मौत भी नसीब कर देना, तौहीद पर कायम दायम रखना और शिर्क से हमारी हिफाजत कर लेना। या अल्लाह, हमारी आलो औलाद और नस्लों में इलाहुल आलमीन ईमान को जारी सारी फरमा। या अल्लाह, हम तो दुनिया से चले जाएंगे, कितने फितने आए हैं और आने वाले हैं हमें पता नहीं है, हमारी नस्लों को इलाहुल आलमीन ईमान पर कायम दायम रखना, ईमान पर कायम दायम रखना, हमारे गुनाहों का असर हमारी औलाद पर न डालना, हमारे गुनाहों का असर हमारी औलाद पर न डालना। तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे हबीब ने फरमाया, अगर माँ बाप नेक है तो 7 पुश्तों तक औलाद नेक चलती रहती है, उनका असर वहाँ तक पहुँचता है, और अगर माँ बाप गुनहगार है तो फिर औलाद पर उसका असर होता है। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह से हम माफ़ी मांगते हैं, ऐ अल्लाह हम तौबा करते हैं, ऐ अल्लाह उसका असर हमारी औलाद पर न देना, हमारी नस्लों पर न पहुंचाना, उनको भी ईमान पर और इस्तेकामत अल दीन पर कायम दायम रखना। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा, हमारी तरावी को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हम सबको आज़ाद फरमा, जहन्नम से आज़ाद फरमा, हमारी आला औलाद, माँ बाप, भाई बहन, अरहलो अयाल सब को और पूरे मजमे को जहाँ जहाँ तक लोग सुन रहे हैं जहन्नम से आज़ाद फरमा। या अल्लाह दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमा, दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, उनकी मदद फरमा, उनकी मदद फरमा। एक तो उनके पास इफ्तारी के लिए खाना भी नहीं है, या अल्लाह गुरबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो नमाज़ पढ़ने भी नहीं दी जाती है। ऐ अल्लाह इनकी गैब से नुसरत फरमा, ऐ अल्लाह तेरी मदद की ज़रूरत है, हम तुझसे तेरी मदद रमज़ान में मांग रहे हैं। ऐ अल्लाह तूने रमज़ान में ही बदर में फरिश्तों को भेजा था, ऐ अल्लाह और सहाबे किराम की मदद की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, ऐ अल्लाह ये रमज़ान ही है। इलाहुल आलमीन 27 नाइट पर तूने कुरान को उतारा है, कुरान को पहले आसमान पर उतारा है, बड़ी बरकतें इस रमज़ान में आई है। ऐ अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इस रमज़ान के वसीले से और बरकत से इन फ़लस्तीन की और पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा, नुसरत फरमा, दुश्मनों को ख़त्म फरमा, दुश्मनों को ख़त्म फरमा, दुश्मनों को ख़त्म फरमा, गैब से मुसलमानों की नुसरत फरमा। या अल्लाह हम सब के और हमारे अहलो आयाल, जितने लोग इलाहुल आलमीन दीन से दूर हैं, उनको दीन की तरफ मुतवज्जे फरमा, सब के लिए हिदायत के फ़ैसले फरमा। या अल्लाह जो भी हम यहाँ बैठ कर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐ अल्लाह कुरान की रोशनी में उस पर हमें अमल की भी तौफीक नसीब फरमा, और हमें इल्म सीखने वालों में से बना दे, हमें इल्म सीखने वालों में से बना दे, और क़यामत तक जब तक हमारी उम्र बाकी रहे, ऐ अल्लाह तालिब इल्म में से बना दे, तालिब इल्म में से बना दे, और हम तलब नीयत से यहाँ बैठें तो क़यामत के दिन हम जब उठें तो तालिब इल्मों के साथ उठें। ऐ अल्लाह ऐसी मौत भी हमें नसीब फरमा। या अकरमुल अकरमीन, या अरहमुर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, जो कर्ज में डूबे हुए हैं और दबे हुए हैं, ऐ अल्लाह उनकी गैब से नुसरत फरमा, ऐ अल्लाह उनकी मदद फरमा, ऐ अल्लाह जो दुनिया से जा चुके उनकी मगफिरत फरमा। या अरहमुर राहिमीन, हमारी रोज़ी रोज़गार में बेंतिया बरकत नसीब फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को आँखों की ठंडक बना, हाफिज़े कुरान बना, आलिम दीन बना, खादिम कुरान बना, आमिल कुरान बना, ऐ अल्लाह दीन के दाई बना, ऐ अल्लाह मुबल्लिगीन में से बना, सुलहा में से बना, इलाहुल आलमीन अतकिया और अवलिया में से बना। या अकरमुल अकरमीन, या अरहमुर राहिमीन, या ज़िल जलाल वल इकराम, जिनके घरों में औलाद नहीं उन्हें औलाद साले नसीब फरमा, जो औलाद वाले उनकी औलादों को नेक बना। ऐ अल्लाह जिनके औलाद की जोर नहीं है उन्हें सालिहीन जोरे नसीब फरमा, जोर वालों में आपस में मोहब्बत मवद्दत नसीब फरमा, इस पूरे मजमे को कबूल फरमा। बहुत सारे बुरे लोग यहाँ बैठे, यंगस्टर्स बैठे, सब को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह सब की दुनिया भी बना दे, हम सब की कब्र भी बना दे, आखिरत भी बना दे, आखिरत भी बना दे। या अल्लाह या रहमान, हमें ईमान से महरूम न करना, ईमान पर रखना और ईमान पर मौत दे देना। या अल्लाह आखिरी हर वक्त हम इफ्तारी में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमारी दुआ है, रिक्वेस्ट है, ऐ अल्लाह तू तो सखियों का सखी है, अरहमुर राहिमीन है, हम तुझसे बस मांग सकते हैं, देना तेरा काम है। ऐ अल्लाह तू तो बंदे के गुमान के मुताबिक देता है, बल्कि गुमान से ज़्यादा देता है। ऐ अल्लाह मांगते हैं बहुत, तेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मरना हो तो मदीने में मरो, मेरे घर के पास मरो, मेरी ज़मीन में दफन हो जाओ, कि क़यामत में मेरे साथ तुम चलो, मेरे साथ रहो। ऐ अल्लाह रमज़ान का مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو، لیلۃ القدر ہو، ریاض الجنہ میں سجدے میں سر ہو، زبان پر تیرا ذکر ہو، لا الہ الا اللہ ہو، اور تیرا فرشتہ ہماری روح نکالے، اور روضہ ایک طرف ہو، ریاض الجنہ ہو، اور ہم تمہاری روح تیرے پاس آ جائیں، اور وہاں پر نماز پڑھی جائیں، اور جنت البقیع میں ہمیں دفن کیا جائیں، اور صحابہ کا پروس ہمیں نصیب ہو جائیں۔ الہ العالمین ایسی برکت والی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والی وصحبہ اجمعین۔